स्वागत आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 22 अक्टूबर और दिन गुरुवार। नेतन्याहू ने कहा यहूदियों को कत्ल करने के लिए फलस्तीनी मुफ्ती ने हिटलर को था उकसाया, लेकिन खुद जर्मनी ने किया खारिज। वित्त मंत्री जेटली ने कहा आने वाले दिनों में दाल की कीमत होगी कम। दशहरे के मौके पर एक रामलीला ऐसी भी जहां उर्दू में बोले जाते हैं डायलॉग्स।
एक एक करके बिछड़ जाएंगे मालूम न था।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार प्रगति सक्सेना से। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने विश्व ज़ायनिस्ट सम्मेलन में एक विवादग्रस्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों की हत्या के लिए हिटलर तो जिम्मेदार थे ही, साथ ही यरूशलम के तत्कालीन ग्रैंड मुफ्ती ने भी उन्हें यहूदियों को मारने की सलाह दी थी। इस बयान के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कड़ी आलोचना हो रही है। जर्मनी ने तुरंत इस बात का खंडन किया है। अमरीका ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की मॉस्को यात्रा की कड़ी निंदा की है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता एरिक शुल्स ने कहा कि राष्ट्रपति असद को मॉस्को का निमंत्रण राष्ट्रपति पुतिन की सीरिया में राजनीतिक बदलाव की इच्छा के बिल्कुल विपरीत है। अमरीका की चिंता रूस की सीरियाई सरकार को लगातार दी जा रही सैन्य मदद है, जिससे राष्ट्रपति असद की सरकार मजबूत होगी और इससे गृह युद्ध और भी लंबा खिंच जाएगा। उधर मॉस्को में राष्ट्रपति असद ने रूस से मिलने वाली सैन्य सहायता पर रूस के लिए कृतज्ञता जाहिर की है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ईरान पर प्रतिबंध से जुड़ी समिति को एक पत्र लिखकर तेहरान के हालिया मिसाइल परीक्षण की जानकारी दी है। तीनों सरकारों ने कहा कि सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का ये साफ उल्लंघन है और इस सिलसिले में जवाबी कार्रवाई की मांग की है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस पत्र में लिखा है कि इस बैलिस्टिक मिसाइल में एक परमाणु हथियार के प्रक्षेपण की ताकत है। अमरीकी उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि वो अगले साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी दौड़ में शामिल नहीं होंगे। व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ओबामा की मौजूदगी में उन्होंने कहा कि वो अभी तक अपने बेटे की कैंसर से हुई मौत से उबरे नहीं हैं। उन्होंने अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों से अपील की कि पिछले कुछ सालों में ओबामा प्रशासन ने जो उपलब्धियाँ हासिल की हैं उन्हें धूमिल न पड़ने दें।
I believe that President Obama has led this nation from crisis to recovery.
मेरा मानना है कि राष्ट्रपति ओबामा देश को संकट से उबार कर बेहतरी की राह पर लाए हैं। हम एक बार फिर पुनरुत्थान के कगार पर हैं। मैं इस प्रक्रिया में शामिल था, इसका मुझे गर्व है। ये पार्टी और ये देश अगर ओबामा की विरासत को बिगाड़ता है तो ये एक गंभीर गलती होगी। हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। ये थे जो बाइडेन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। विकीलीक्स वेबसाइट ने अमेरिका के खुफिया विभाग CIA के निदेशक जॉन ब्रेनन के निजी अकाउंट की मेल्स प्रकाशित की हैं। इससे कुछ दिन पहले ही एक लड़के ने जॉन ब्रेनन के AOL अकाउंट को हैक कर लिया था। CIA ने इस हैकिंग की निंदा की थी और कहा था कि ये निजता का उल्लंघन है। CIA ने यह भी कहा था कि इस हैकिंग में कोई भी क्लासिफाइड जानकारी लीक नहीं हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में सैकड़ों छात्रों ने संसद में घुसने की कोशिश की और इस दौरान छात्रों की पुलिस से झड़पें भी हुई। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है अक्टूबर की 22 तारीख और दिन गुरुवार। कार्यक्रम की शुरुआत इसराइली प्रधानमंत्री के एक विवादास्पद बयान से। इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि होलोकॉस्ट यानी जर्मनी में यहूदियों के कत्लेआम के लिए हिटलर को उस वक्त फलस्तीन के ग्रैंड मुफ्ती रहे अमीनुल हुसैनी ने उकसाया था। हिटलर तो केवल यहूदियों को यूरोप से बाहर निकालना चाहते थे। बिन्यामिन नेतन्याहू के इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। खुद जर्मनी ने भी कह दिया है कि इसके लिए हिटलर ही जिम्मेदार थे। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का सार सुना रही हैं प्रगति सक्सेना।
इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने विश्व ज़ायनिस्ट सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अडोल्फ हिटलर यहूदियों को यूरोप से सिर्फ बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन यरूशलम के तत्कालीन ग्रैंड मुफ्ती हज अमीन अल हुसैनी ने हिटलर से कहा था कि उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया जाए वरना वे फलस्तीन में आ जाएंगे। इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, हिटलर ही यहूदियों को मारने के लिए जिम्मेदार था। किसी को इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए कि मेरे ख्याल से 60 लाख यहूदियों को मारने की जिम्मेदारी हिटलर और नाजियों की है, लेकिन किसी को इस बात से भी इनकार नहीं करना चाहिए कि इस बात के सबूत हैं कि यरूशलम के मुफ्ती ने नाजियों से कहा था कि यहूदियों को यूरोप में जाने से रोकना चाहिए और उन्होंने यहूदियों के लिए फाइनल सॉल्यूशन की हिमायत की थी। इस बात का जर्मनी ने तुरंत खंडन किया। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि जर्मनी इस अपराध के लिए बुनियादी तौर पर हिटलर को ही जिम्मेदार मानता है। इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है कि होलोकास्ट के लिए हिटलर की नेशनल सोशलिस्ट पार्टी ही जिम्मेदार थी। सरकार की तरफ से और अपनी तरफ से भी मैं ये कह सकती हूँ कि नेशनल सोशलिस्ट पार्टी ही इसके लिए जिम्मेदार थी। इस बात में हमें कोई शक नहीं कि हमारी भावी पीढ़ियों को इस ऐतिहासिक तथ्य को स्वीकार करना होगा। तो इतिहास के इस मुद्दे पर अपना नजरिया बदलने की हमारे पास कोई वजह नहीं। एंगेला मर्केल। फलस्तीनी संगठन PLO के महासचिव साएब एराकात ने एक बयान जारी कर कहा कि ये इतिहास में एक दुखद दिन है जब इजरायली सरकार के मुखिया के बयान से ये जाहिर हो रहा है कि वे फलस्तीनियों से इतनी नफरत करते हैं कि 60 लाख यहूदियों की हत्या करने वाले इतिहास के सबसे कुख्यात युद्ध अपराधी हिटलर को भी माफ करने को तैयार हैं। होलोकास्ट में मारे गए लोगों की याद में बने इसराइली मेमोरियल के मुख्य इतिहासकार का भी मानना है कि यह तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है कि ग्रैंड मुफ्ती ने इस बारे में कुछ कहा, लेकिन इसराइल के प्रधानमंत्री का इस संवेदनशील ऐतिहासिक मुद्दे को उस वक्त छेड़ना, जबकि इसराइल में हालात वैसे ही नाजुक चल रहे हैं, इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसराइल फलस्तीनी हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद अपनी आक्रामकता छोड़ने को राजी नहीं है।
ये थी प्रगति सक्सेना। और अब बात अमेरिका से। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और आज शाम वो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे। इस बारे में और जानकारी के लिए सीधे चलते हैं वॉशिंगटन, जहां टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं BBC संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय। ब्रजेश, बताएं कि नवाज शरीफ की ओबामा से कब मुलाकात होनी है?
देखें, बृहस्पतिवार को अमरीकी समय के हिसाब से लगभग 11 बजे मुलाकात शुरू होगी। अमरीकी अधिकारियों का कहना है कि अफगानिस्तान सबसे बड़ा मुद्दा होगा बातचीत का, और BBC से खास बातचीत में अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो विशेष अमरीकी राजदूत हैं लॉरा मिलर, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की बड़ी भूमिका है अफगानिस्तान के युद्ध में और वहां हिंसा रोकने पर, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को बातचीत के लिए राजी करने पर भी बात होगी। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर, यानी वो कितने सुरक्षित हैं, उन पर भी बातचीत होगी जब दोनों नेता मिलेंगे। वहीं नवाज शरीफ पाकिस्तान को जो फौजी मदद मिलती है उसे जारी रखने के लिए दबाव डालेंगे, क्योंकि 2016 के बाद उसकी मियाद खत्म हो रही है और अंदाजा है कि वो भारत के साथ बढ़ते हुए तनाव का भी जिक्र करेंगे और अमरीकी मध्यस्थता की बात करेंगे।
जी, और ब्रजेश, नवाज शरीफ की अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी से मुलाकात भी हो चुकी है और इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उन्होंने भारत के मदाखलत की पाकिस्तान में कुछ दस्तावेज सौंपे हैं, आपके पास क्या जानकारी है?
जी हाँ, जॉन केरी के साथ मुलाकात के दौरान पाकिस्तान के जो राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों के सलाहकार हैं सरताज अजीज, उन्होंने 3 दस्तावेज सौंपे हैं। ये पाकिस्तानी पक्ष का कहना है और उनका कहना है कि इनमें सबूत है कि पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने में भारत की जो कोशिश है उस बारे में। अमरीकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं की है इस बात की। वहीं विदेश विभाग ने यह भी कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ और सभी आतंकवादी गुटों के खिलाफ पाकिस्तान कदम उठाए, उस पर भी बात हुई है। लेकिन अब से कुछ ही देर पहले पाकिस्तान के जो विदेश सचिव हैं एजाज चौधरी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इस मामले पर उठे सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ बहुत कर चुका और कर रहा है और अब दुनिया को करने की जरूरत है।
जी, बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।
दुनिया की बड़ी खबरें बीबीसी के साथ सोमवार से शुक्रवार देखिए टीवी पर बीबीसी दुनिया, ईटीवी नेटवर्क के हिंदी और उर्दू के सभी चैनलों पर।
नमस्कार, स्वागत है आप सबका, ये है बीबीसी दुनिया, मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर।
यहाँ आकर वो लोगों को गले लगाते हैं और कहते हैं हम अब आजाद हैं,
उससे बात करने में बहुत मजा आता है,
तो देखना मत भूलिए बीबीसी दुनिया शाम 9:20 पर ईटीवी के साथ साथ bbchindi.com और बीबीसी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर भी। बीबीसी दुनिया।
और अब लौटते हैं भारत की ओर। भारतीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल देर शाम दिल्ली में एक बैठक के बाद दावा किया कि दाल की बढ़ती कीमतों पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा। क्या कहते हैं अरुण जेटली, सुनते हैं।
5,000 मेट्रिक टन देश में और ला रहे हैं इंपोर्ट करके, वो सारा आ चुका है, बाजार में ऑफलोड कर दिया गया है। कई राज्य तमिलनाडु वगैरह विशेष रूप से जहां इसकी कंजम्पशन ज्यादा होती है उन्होंने उठाना शुरू कर दिया है। इससे थोड़ा होलसेल की कीमतों पे असर पड़ने लगा है जो कुछ समय में रिटेल कीमतों के ऊपर अपना प्रभाव डालेगा। दिल्ली में 380 सफल स्टोर और 103 केंद्रीय भंडारों में दाल उपलब्ध है 120 रुपए किलो के हिसाब से। ये बहुत खेद का विषय है कि इस होर्डिंग को रोकना जो राज्यों की जिम्मेवारी थी उस पे कार्रवाई नहीं हुई और विश्व के बाजार में भी जो कमी थी, भारत में तो दालें कम उगती हैं, उसका उत्पादन कम है, प्रयोग ज्यादा होता है, इस्तेमाल ज्यादा होता है, इसलिए मलावी से, मोजाम्बिक से, म्यांमार से हम लोग मंगवाते हैं, वहां भी इस बार पैदावार कम है।
ये थे वित्त मंत्री अरुण जेटली। लेकिन सवाल ये है कि आखिर दाल की, खासकर अरहर दाल की कीमत 200 रुपये प्रति किलो तक पहुंची कैसे, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? जवाब जानने के लिए हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने बात की जाने माने अर्थशास्त्री मोहन गुरुस्वामी से।
असल वजह यह है, बड़े इलाकों में देश में बरसात की कमी थी और जो ट्रेडिशनल दाल प्रोड्यूसिंग एरियाज है, वेस्टर्न महाराष्ट्र, तेलंगाना वगैरह एरियाज है, और इसमें शॉर्टफॉल आ रही है प्रोडक्शन में 2 मिलियन टन की। नॉर्मल फसल जो होता है 18-19 मिलियन टन का होता है, आपके बार 10% कम हुआ है, ये बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है। अब जितना भी खरीद लेंगे आपको इतना दाल बाहर प्राप्त नहीं होगा, जो इम्पोर्ट कर रहे हैं 5,000-10,000 टन, उससे कुछ गैप क्लोज नहीं होगा। तो दाम तो जाना ही वाजिब, डिमांड ज्यादा है, दाल ऐसा है एक एसेंशियल आइटम है। दूसरी चीज प्रोडक्शन की कमी की इस वजह है क्योंकि हमारे देश में जो है मुल्क में सीरियल्स की प्रोडक्शन को हाईली सब्सिडाइज किया जाता है, कम से कम 15,000 रुपए पर एकड़ की सब्सिडी होती है सीरियल्स पे, तो इसलिए इंसेंटिव जो है जमीन अगर दाल भी उग सकता है उस पे सीरियल लगा दें क्योंकि सब्सिडी मिलेगा और मुनाफा मिलेगा, इसलिए दाल की प्रोडक्शन हिस्टोरिकली निग्लेक्ट हुआ गया है इस देश में। तो आज सिर्फ 18 मिलियन टन की उत्पादन है, तो इसको अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना है और जैसे लोग की इनकम बढ़ रही है, जो उनकी जो कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रही है, वो सीरियल से दूसरे फूड्स को भी माइग्रेट हो रहे हैं, तो दाल की कंजम्पशन बढ़ेगी, सब्जियों की कंजम्पशन बढ़ेगी। तो आप देख रहे हैं देश में सिर्फ न सिर्फ दाल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम भी बढ़ रहे हैं।
उत्पादन कम हुआ इसकी वजह से और तमाम दूसरी वजहें आपने बताई, आपको लगता है कि सरकार के स्तर पर कहीं किसी तरह की योजना बनाने में चूक हुई है जिसकी वजह से इस तरह की समस्याएं पेश आती हैं?
हमको पता चला अप्रैल के महीने में कि इस साल बरसात कम होने वाली है और सीजनल ट्रेंड भी था, एल नीनो का इफेक्ट का भी था, तो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट से कह दिया कि आपको शॉर्टफॉल होगा। शॉर्टफॉल जब होगा ड्रॉट प्रोन एरियाज में, और एरियाज भी डेजिग्नेट किए गए कि यहाँ बारिश कम होगा, तो आपको तैयार करना चाहिए था, दाल के स्टॉक्स बनाना चाहिए था, उस वक्त आप मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में गए नहीं। जब इंटरनेशनल मार्केट तब गए जब उनको पता चला कि आपको शॉर्टेज है तो दाम और बढ़ गए। तो इसमें कोऑर्डिनेशन की बात है, देश में जो है अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, इनको कोऑर्डिनेट करने में पीएमओ की रोल होती है। अगर पीएमओ अगर सोता है तो कोऑर्डिनेशन होता नहीं। सिविल सप्लाई मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, कॉमर्स, 4 मिनिस्ट्री है इसमें। अगर इनकी कोऑर्डिनेशन पीएम की ऑफिस नहीं करती है तो कुछ काम होता नहीं। तो हम देख रहे हैं कि 15 दिन पहले तक कुछ हुआ ही नहीं, अब मंगा रहे हैं इमरजेंसी बेसिस पे, को मिला है 5,000 टन म्यांमार से, 5,000 टन और 2 मिलियन टन की शॉर्टफॉल में बहुत अंतर है, कुछ कुछ असर ही नहीं होगा। तो इसकी जिम्मेदारी किसी को लेना ही पड़ेगा। हम पूछते हैं कि सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट सेक्रेटरी, ये लोग क्या कर रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर तो विदेश यात्रा में मशरूफ रहे, पर उनके अफसर लोग तो यहीं थे ना।
उनके अफसर लोग तो यहीं थे, प्राइम मिनिस्टर भले ही विदेश यात्रा में मसरूफ रहे, पूछ रहे थे मोहन गुरुस्वामी। और अब बात बिहार चुनावों की। बिहार में सीवान की रघुनाथपुर विधानसभा सीट अचानक सुर्खियों में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां अपने मौजूदा विधायक विक्रम कुंवर का टिकट काट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी जगह मनोज सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिनकी छवि आपराधिक बताई जाती है और उनका नाम राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद और विवादित राजनेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के शूटर के तौर पर लिया जाता रहा है। सिवान की मौजूदा सियासत पर बीबीसी संवाददाता पंकज प्रियदर्शी की ये रिपोर्ट।
बिहार की राजनीति का एक अनोखा चेहरा सिवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। चाल, चरित्र और चेहरे का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी यहाँ एक अनोखे संकट में पड़ी है। भाजपा ने मौजूदा विधायक का टिकट काटकर एक बड़े संकट को न्योता दे दिया है। अब ये विधायक न सिर्फ भाजपा से अलग हो गए हैं, बल्कि विरोधी जनता दल यूनाइटेड के खेमे में शामिल होकर भाजपा को हराने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक किए हुए हैं। कुछ समय पहले तक पार्टी टिकट की आस में अपना तन मन धन लगाने का दावा करने वाले विक्रम कुंवर अब पार्टी को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। आरोप यहां तक है कि भाजपा ने जिन मनोज सिंह को टिकट दिया है वे न सिर्फ आपराधिक छवि के हैं, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद और विवादित राजनेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के शूटर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र को एकाएक सुर्खियों में ला दिया है। मैंने जब रघुनाथपुर क्षेत्र में जाकर मनोज सिंह से मुलाकात की तो अपने समर्थकों से घिरे मनोज सिंह उत्साह से भरे हुए नजर आए। उनके समर्थक भी जोश से भरे नजर आए।
मनोज भैया जिंदाबाद,
जिंदाबाद,
जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद,
जिंदाबाद, जिंदाबाद।
रघुनाथपुर का विधायक कैसा हो,
भैया कैसा हो,
मनोज भैया जिंदाबाद।
लेकिन जब शहाबुद्दीन से नजदीकी पर सवाल पूछे गए तो उनका कहना था,
देखिए वो तो शहाबुद्दीन के वो खुद शूटर हैं, हम तो गांव के हैं तो हम पर सट गया कि हम शूटर है, वो दूसरे जगह के हैं तो हमारे से ज्यादा उन पर लागू होता है ये चीज, ये शूटर शब्द प्रासंगिक नहीं है।
मनोज सिंह उल्टे विक्रम कुंवर पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि विक्रम कुंवर जो भी कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं,
वो व्यक्तिगत रूप से हम पर आक्षेप किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। शहाबुद्दीन मेरे ग्रामीण हैं, मेरे हम उम्र के हैं, हम लोग एक साथ प्राइमरी से कॉलेज तक साथ पढ़े, इसलिए हम पर लोग आरोप लगाता है। लेकिन हमने किसी का हत्या नहीं किया, हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, तो इसलिए गलत है, एक गांव के हैं जिसकी वजह से सट जाती है बात, और कोई बात नहीं।
दरअसल लंबे समय तक सिवान और इसके आसपास के इलाके की राजनीति पर मोहम्मद शहाबुद्दीन का दबदबा रहा है। शहाबुद्दीन इस समय कई आपराधिक मामलों में जेल में हैं। एक समय मनोज सिंह और शहाबुद्दीन साथ साथ थे। मनोज सिंह भी मानते हैं कि वो और शहाबुद्दीन एक गांव के हैं, इसलिए लोग उन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उनका किसी आपराधिक गतिविधियों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विक्रम कुंवर का कहना है कि वे अपनी बात पर कायम हैं। वे कहते हैं कि अगर उनकी बात गलत रहती तो मनोज सिंह उन पर अभी तक मानहानि का मुकदमा कायम कर देते। शहाबुद्दीन से अपनी नजदीकी पर वे कहते हैं कि उनका और शहाबुद्दीन का रिश्ता राजनीतिक था, न कि आपराधिक।
मैं शहाबुद्दीन के साथ ही रहा हूँ, हम रहे हैं, बड़ा भाई छोटा भाई के हैसियत से रहे हैं, और मेरा उनसे पॉलिटिकल संबंध रहा है, क्रिमिनल का संबंध नहीं रहा। जितने भी सीमांत जिले में अपराध हुए हैं, सारे अपराधों में शहाबुद्दीन का तो नाम था, क्राइम यही करते थे।
रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र की इस लड़ाई में भाजपा को एक और सवाल का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल टिकट बंटवारे को लेकर भी पार्टी के कई नेता नाराज हैं। विक्रम कुंवर उन मौजूदा विधायकों में शामिल हैं जिनका भाजपा ने टिकट काट दिया है। विक्रम कुंवर कहते हैं कि पार्टी का असली चेहरा अब सामने आ गया है।
भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा खत्म हो गया है, अब ठेकेदार और दलाल और व्यापारी के हाथ में पूर्णतः नेतृत्व आ गया है।
दरअसल बिहार में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जंगल राज का डंका पीट रही है, उसी तरह सिवान में भाजपा लोगों को शहाबुद्दीन के दौर के कथित आतंक की याद दिला रही है। इन सब के बीच मोहम्मद शहाबुद्दीन सिवान की राजनीति के केंद्र में है, अब भी बरकरार है। वे वर्षों से जेल में है, लेकिन सच्चाई यही है कि उनके नाम पर राजनीति अब भी चालू है। पंकज प्रियदर्शी, बीबीसी सिवान, बिहार।
और अब वक्त हो चला है अखबारों की समीक्षा का, और मेरे सहयोगी प्रगति सक्सेना तमाम अखबारों के साथ हैं। जी प्रगति, बताएं।
जी इकबाल, आज जो खबरें सभी अखबारों में हैं वो सबसे पहले तो फरीदाबाद में जो हादसा हुआ दलितों का, उसकी सीबीआई जांच की मांग की है हरियाणा सरकार ने। तख्तों के जत्थेदारों को तलब करने वाले पांच प्यारे निलंबित, ये पंजाब से खबर है कि पंजाब में पंथक संकट गहरा गया है। राम रहीम को माफ़ करने पर पांचों सिंह साहिबान को तलब किया गया, जत्थेदारों को तलब करने पर पंच प्यारे भी निलंबित हो गए। इसके अलावा आज दिल्ली में कार फ्री डे है, तो आज सड़क पर उतरेगी दिल्ली और साइकिल चलाएगी लाल किले से इंडिया गेट तक। जमाखोरों से 10 राज्यों में 36,000 टन दाल जब्त की गई है और अब इसके सस्ते होने के आसार लग रहे हैं। अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट आई है दादरी कांड पर कि पूर्व नियोजित थी ये दादरी में हत्या और मंदिर से उकसाया गया था। नई दुनिया में खबर है कि हार्दिक पर राजद्रोह का एक और केस आ गया है, और उधर हार्दिक के पिता ने पाटीदार समाज से हार्दिक की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरने की अपील की है। रतलाम और देवास में उपचुनाव 21 नवंबर को होंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना का पोस्टर वॉर शुरू हुआ है, मोदी को उन्होंने ढोंगी बताया और उसमें लिखा हुआ था कि भूल गए वो दिन जब बाला साहब के आगे सिर झुकाते थे। इसी से जुड़ी एक खबर जनसत्ता में है कि अब शिवसेना ने जो है वो यू टर्न ले लिया है और इन पोस्टरों को हटा दिया है। जनसत्ता में एक और खबर है कि शिवसेना के निशाने पर पाक अभिनेता फवाद और माहिरा खान हैं, उनको कहा गया है कि वो अपनी जल्द ही रिलीज़ होने वाली फिल्मों की पब्लिसिटी के लिए यहाँ ना आएं। हिंदुस्तान में एक खबर है कि नेट परीक्षा में जूते नहीं पहन सकेंगे। सीबीएसई ने एआईपीएमटी में जो परेशानी हुई थी पेपर लीक होने की और चीटिंग की, उससे सबक लेते हुए नेट में भी ड्रेस कोड लागू किया है कि आप पूरी बाहों की कमीज़ नहीं पहन सकते हैं और जूते नहीं पहन सकते हैं। 27 दिसंबर को ये परीक्षा होने वाली है। हिंदुस्तान में ही एक और खबर है कि नर्सों के चेंजिंग रूम में खुफिया कैमरे की बात सामने आई है, ये रोहिणी स्थित राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में है।
जी बहुत शुक्रिया प्रगति आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब एक ख़ास रिपोर्ट। आज दशहरा है, जिसे आप विजयदशमी भी कह लें। रामायण, जो राम और सीता की हज़ारों साल पुरानी कहानी है, जिसे हिंदू बड़ी आस्था और श्रद्धा से पढ़ते आए हैं। असल रामायण संस्कृत में थी और तब से हर साल दशहरे के मौके पर जगह जगह इसका मंचन होता आया है। दिल्ली के नज़दीक फरीदाबाद में एक जगह ऐसी भी है जहां रामलीला होती है, जिसमें आप लख्त जिगर, संग दिल जैसे अल्फाज आसानी से सुन सकते हैं, यानी उसके ज़्यादातर डायलॉग्स उर्दू में लिखे जाते हैं। बीबीसी उर्दू सेवा के हमारे साथी सोहेल हलीम भी ऐसी ही एक रामलीला देखने पहुंचे।
वक्त के साथ इस रामलीला की जबान भी बदल रही है। मुश्किल उर्दू की जगह अब आसान हिंदुस्तानी ने लेना शुरू कर दी है, लेकिन पूरी तरह नहीं। अब भी जगह जगह आपको लख्ते जिगर जैसे शब्द सुनने को मिलेंगे। पर्दा उठने में बस कुछ ही देर बाकी है और रामलीला के मुख्य पात्र एक आखिरी मर्तबा अपने डायलॉग दोहरा रहे हैं।
सहावती में कब कोई किसी का साथ देता है कि तारीकी में साया भी जुदा इंसान से होता
है। फरीदाबाद की रामलीला के इस स्टेज ने इन कलाकारों की जबान भी बदल दी है।
जो पहले साल हम चढ़े तो उर्दू सीखने में भी हमारे को दिक्कत आई काफी, लेकिन अब कोई दिक्कत भी नहीं आती और बहुत अच्छा लगता है।
अच्छा लगता है उर्दू बोलना, उर्दू सीखना, क्योंकि हमने बुजुर्गों से अपने साथ बैठ के उनके साथ उर्दू सीखी।
इस रामलीला में उर्दू के इस्तेमाल की कहानी पुरानी भी है और दिलचस्प भी।
और मौत का तालिब हूँ मैं, मेरी लबों पे जान है, दो घड़ी का ये मुसाफिर आपका मेहमान है। तो इसमें ऐसी कौन सी बातें समझ में नहीं आती, बड़ी आराम से समझ आती है। तो जिन लोगों ने भी इस पर काम किया, उतनी गहराई से किया है कि कभी लुप्त होने वाली चीजें हैं ही नहीं, ये हमेशा सलामत रहेंगी। तो कोशिश ये है कि परंपराएं जिंदा रहें और उसमें ज्यादा रद्दबदल हो नहीं।
विजय रामलीला कमेटी के प्रमुख विश्व बंधु शर्मा,
जसवंत सिंह टोहानवी और एक पंडित राधेश्याम, इन दो लोगों ने उर्दू में ही रामायण लिखी नाटक के रूप में, और उनको ही हमने रखा अपने पास। उसको फिर बाद में जैसे कोई बात कम करनी पड़ी या ज्यादा करनी पड़ी या उसमें अपनी तरफ से कुछ डालना पड़ा वक्त के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, तो फिर उसे कापियों में रजिस्टर में उतार लिया गया, वो आज भी हमारे पास सलामत है चीजें सारी।
नई पीढ़ी उर्दू लिखना और पढ़ना नहीं जानती, लेकिन अपनी रामलीला की पहचान बनाए रखने के लिए रामलीला कमेटी कमर कसकर बैठी है। फरीदाबाद के पूर्व मेयर अशोक अरोड़ा उन पुराने लोगों में शामिल हैं जिनके पूर्वजों ने पाकिस्तान से आने के बाद यहाँ उर्दू में रामलीला शुरू की थी।
मैं कह रहा हूँ उर्दू की भाषा बहुत मीठी भाषा है और लगती बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत सरल भाषा है। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। रामायण चपाइयों के साथ है। उर्दू की रामायण जो इन्होंने लिखी है लेखनी, ये बिल्कुल चलंत लिखी है। रामायण को चपाइयों को परिवर्तन कर दिया हिंदी।
और अब विश्व बंधु शर्मा और उनके साथी अपनी इस परंपरा को जारी रखने के लिए नई पीढ़ी को उर्दू और संस्कृत पढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं।
इस कार्यक्रम के बाद यहाँ एक क्लास ऐसी भी शुरू करें जो उर्दू की तालीम भी दे, संस्कृत की तालीम भी दे, ताकि दोनों भाषाएं जो हिंदुस्तान को जोड़ के रखती हैं, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और कहीं से लेकर कहीं तक सभी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन बुनियाद में ये दोनों भाषाएं हैं। तो हमारा तो प्रयास ये रहेगा कि इस कार्यक्रम के बाद हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे आलिम फाजिल लोगों को लेकर के आएँ जो उर्दू और संस्कृत के बारे में लोगों को बताएं और उनको सिखाएं, पढ़ाएं।
बल्कि
हजारों साल पुरानी रामायण की इस कहानी में आज राम के वनवास का दिन है।
जाने वाले जाते जाते कोई निशानी देता जा।
आज झगड़ा इस बात पर है कि अयोध्या का सिंहासन राजा दशरथ के सबसे बड़े बेटे राम को मिले या उनके सौतेले भाई को। राम को 14 साल का वनवास होता है, शाही महल में कोहराम मचा है।
एक एक करके बिछड़ जाएंगे मालूम न था दिन कभी ऐसे भी आए।
राम आखिरकार वनवास के लिए चले जाते हैं। राजा दशरथ ये सन्मान बर्दाश्त नहीं कर पाते।
हसरतों के वो मंजर एक एक करके सजाए थे हम।
आज के लिए तो पर्दा गिर रहा है, लेकिन सांस्कृतिक समावेश की ये कहानी अभी बाकी है। सुहेल अली, BBC, फरीदाबाद।
मालूम न था दिन कभी
तो उर्दू ज़बान में पेश किए की जाने वाली ये रामलीला आपको कैसी लगी, या ये कहा जाए कि सुहेल हलीम की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप हमें ज़रूर लिखिएगा। हमें आपके ख़तों का लंबा रहता है इंतज़ार। और अब वक्त हो चला है प्रमुख समाचारों का।
BBC समाचार। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने विश्व ज़ायनिस्ट सम्मेलन में एक विवादग्रस्त बयान दिया है। अमेरिका ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को मॉस्को यात्रा की कड़ी निंदा की है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ईरान पर प्रतिबंध से जुड़ी समिति को एक पत्र लिखकर तेहरान के हालिया मिसाइल परीक्षण की जानकारी दी है। अमरीकी उपराष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की है कि वो अगले साल राष्ट्रपति पद के लिए चुनावी दौड़ में शामिल नहीं होंगे। विकीलीक्स वेबसाइट ने अमरीका के खुफिया विभाग CIA के निदेशक जॉन ब्रेनन के निजी अकाउंट की मेल्स प्रकाशित की हैं। दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में सैकड़ों छात्रों ने संसद में घुसने की कोशिश की और इस दौरान छात्रों की पुलिस से झड़पें भी हुई हैं। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए रबर की गोलियों और स्टन गन्स का इस्तेमाल किया। ये छात्र ट्यूशन फीस में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। कई दिनों के विरोध प्रदर्शनों के चलते बहुत से विश्वविद्यालय बंद कर दिए गए हैं। BBC समाचार।
तो नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद यानी 8 बजे कार्यक्रम विश्व भारती में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 2400 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।